Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Acharya Swami Sri Bhagavatanandaji Saraswati Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
ए श्वेताश्वतर्ण उपनिषद का आज 13वां मंत्र है, तो इसमें आप लोग उबे नहीं, आगे चल के बहुत बढ़िया प्रसंग आएगा। एक तो पहली बात है, पहले दूसरे तीसरे में सृष्टि का वर्णन आया। सृष्टि भी जरूरी है, भागवत में भी है। सृष्टि का आज उद्गम कहाँ है तो बताया कि ब्रह्म ही है परमात्मा। जब अत्युजी वस्तु ब्रह्मा है तो कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है, तो वही हुआ। अविद्या का और माया का आशय भी वही, विषय भी वही। वैसे अलग अलग मानते हैं वर्ण प्रस्थान तरीके के हिसाब से, लेकिन वास्तव में प्रकृति अगर होगी तो जड़ प्रकृति जड़ से संबंध है नहीं। अच्छा, यदि परमाणु से मान ले हो, तो परमाणु से चार्वाक तो कहता है आत्मा ही देह है, देह ही आत्मा है। तो चार्वाक बौद्ध जैन वो अपने अपने अलग कहते हैं। इसलिए ब्रह्म को सृष्टि का आदि मूल कारण माना गया, ये तीन श्लोकों में है। आगे के तीन श्लोकों में ये बताया कि ये जो ब्रह्म है सर्व प्रकाशक है, सर्वाभाषक है, और इसके किसी की दूसरे दिया की जैसे दिया को ढूंढने के लिए दीपक की जरूरत नहीं होती है, ऐसे जरूरत नहीं है। अगले तीन अध्याय में ये बताया, तीन श्लोकों में, कि भाई प्रकृति और ब्रह्म में क्या फर्क है। अगर मान लो थोड़ी देर सांख की बात मान लो, प्रकृति नित्य मानते हैं तो नित्य है कि अनित्य है, कि फिर क्षरणशील है तो विनाश को प्राप्त होने वाली वस्तु तो नहीं हो सकती। फिर जीव और ईश्वर का भेद बताया गया, जीव क्या है ईश्वर क्या है। तो अविद्या अविद्याग्रस्त रहता है जीव, और मायाग्रस्त रहती है रहता है भगवान। लेकिन अविद्या का प्रभाव पूरा पूरा जीव पर पड़ जाता है, माया का पूरा क्या अधूरा भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जादूगर जो होता है उस पर जादू का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसी प्रकार से माया का कोई प्रभाव ईश्वर पर नहीं पड़ता है। ईश्वर नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला रहता है, और तत्पद से इसको बताया गया, तुम पद से जीव को बताया गया। अब जीव और ईश्वर को निर्मुक्त नित्य शुद्ध बुद्ध माया से और अविद्या से ग्रस्त बताया गया। यद्यपि सगुण साकार का भी वर्णन है, सगुण साकार का भी वर्णन है, और जब तक देह है, देह का ध्यास बिल्कुल छूट जाए तब तक सगुण का ही ध्यान चिंतन करना चाहिए, ये भी बात है। क्योंकि देह में आसक्ति है और दी उपचय से बना है ढेर, तो वो दूसरों के लिए होता है। जो कई चीजें मिलकर बनती हैं, कहीं कहीं ईट कहीं का रोड़ा, भानवती का कुरवा जोड़ा, ईट कुछ गारा, कुछ खून का गारा बना है, हड्डियां इसमें ईट हैं, तो ऐसे बनाया गया। तो बनाया गया चीज दूसरों के लिए होती है, अपने लिए होती नहीं है। तो इसलिए एक तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कोई मशीन है, मशीन बड़ी मशीन है, उसमें स्विच ऑन कर दिया तो अपने आप आटा में से आटा निकलने गए, चक्की में से तेल निकलने लगेगा, जो जो डाला है वो निकलने लगेगा। इसी प्रकार से मैं चिन्मय आत्मा उसका ओन करने से सब इंद्रियां अपने अपने काम में लग जाती हैं। इस तरह से इंद्रियों का सामर्थ्य बताया गया और सामर्थ्य कम है इंद्रियों में, इंद्रियों में सामर्थ्य कम है, एक दूसरे की मदद नहीं कर सकती। कान आंख की मदद नहीं कर सकता, आंख कान की मदद नहीं कर सकता, तो इतनी तो सामर्थ है। और इस सामर्थ्य में जब खुद असमर्थ है तब सर्व समर्थ को भला कैसे प्रकाशित करेंगे, ये बताया गया। इंद्रियां मन बुद्धि ये नहीं जा सकती वहां तक, इसकी पहुंच वहां तक नहीं है। और स्वयं स्वयं प्रकाशक है, स्वयं सबको प्रकाश देता है, लेकिन अपने लिए कुछ प्रकाश नहीं चाहिए, ये बात बताई गई। अच्छा, और अंतिम श्लोक में ये बताया गया क्षारा क्षयम, माने क्षार है, क्षरणशील है प्रकृति, क्षण क्षण क्षीण हो रही है, और ब्रह्म जो है वो क्षीण नहीं होता है, अविनाशी है। अविनाशी है जब जीव भी है, लेकिन चूंकि देह के साथ मिल गया है, इंद्रियों के साथ मिल गया है, इंद्रियों से भीख मांगता है, स्वयं स्वरूप का चिंतन करे अगर तो उसमें आनंद ही आनंद है, लेकिन स्वयं स्वरूप का चिंतन न करके इंद्रियों से भीख मांगता है। तुम्हें आंख से कहता रूप दिखाई दो, कान से कहता शब्द सुनाई दो, नाक से कहता सुंघाए दो, त्वचा से कहता है कुछ स्पर्श करा दो, और जीभ से कहता है कुछ स्वाद दिवा दो। ये क्यों भीख मांगता है? क्योंकि अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। अपने स्वरूप का ज्ञान होए तो सब पास कट जाते हैं, ये बताया गया अंतिम में। पास कट जाते हैं, पास माने फंदे, जो फंदा है, जो जीव दुखी है बेचारा, वियोग से, अपमान से, हानि से, ये सब शरीर में है यद्यपि, लेकिन वो अब शरीर के साथ इतना तादाद में कर लिया है, इतनी आसक्ति हो गई है कि वो अपना मानता है कि हाय हमारा अपमान हो गया, हमारा मान हुआ, सम्मान हुआ। भरतर जी कहते हैं वो चैतन्य महाप्रभु कि सम्मानम गरलाति घोर गरलम और नीचापमानम सुधा, अपमान होए तो सुधा अमृत मानना चाहिए, और सम्मान करयाति घोर गरलम गरल गरल समझना चाहिए, लेकिन मानता है, इसलिए इसका नाम जीव पड़ गया। वास्तव में ये अविनाशी है, ये भी ईश्वर का अंश है तो अविनाशी है। जैसे कहा जाए जल जल का अंश है, कुआ में जो जल है वो समुद्र का अंश है, अरे तो जल जल एक सा है, उसमें क्या बात। इसी प्रकार से सब घट में प्रतिबिंब रूप से विराजमान चिदाभास भी अविनाशी है, और बिंब प्रतिबिंब में कुछ अंतर नहीं होता है, एक ही बात होती है। तो इस तरह से अविनाशी स्वयं प्रकाश अपने आप सर्वाभासक ये सिद्ध हो गया। ये जीव भी है, लेकिन जीव ये बताया गया ये देह के साथ आसक्त रह करके जीव बन गया है बेचारा। बल्कि महात्मा लोग तो ये बताते हैं कि जीवपना छोड़ दो, देह के साथ आसक्ति न हो, इंद्रियों में से भीख न मांगी जाए, और जब जब समझे तो अपने को स्वयं प्रकाश समझे, सर्वभाषक पूर्ण है हम। असल में मन चूंकि पूर्ण है, ये दो बातें अच्छी तरह समझ लीजिए, इंद्रियां और मन प्रकृति का है, इसलिए प्रकृति में दौड़ दौड़ जाता है, जो जिसका होता है उसमें जाने में कोई बात नहीं है, जाता ही है। दूसरी बात ये स्वाद लेने की बात है, तो इसलिए स्वाद लेता है, स्वरूप का ज्ञान नहीं है, मन हमेशा, तीसरी बात ये, मन हमेशा जानकारी में जाता है, जहाँ ज्ञान है वहीं जाएगा, क्योंकि चित्त स्वरूप है और अंतःकरण शुद्ध है। अंतःकरण शुद्ध जिसका होगा वो मन जाएगा जहाँ जाएगा, यत्र यत्र मनोयाति तत्र समाधया, जहाँ मन जाता है वहीं समाधिस्थ हो जाता है। बुद्ध भगवान पेड़ को देखते थे, पेड़ में लिपट जाते थे, आहा बहुत अच्छा तुम आ गए, तो उनको कोई दिखता होगा, उनको भगवान दिखता था, पेड़ में भी भगवान दिखता, कुत्ता में भगवान को नामदेव को दिखा, तो गधे में दिखा, तो भगवान जब सब जगह दिखने लगता है, सब जगह दिखने लगता है, तब मालूम पड़े कि अब हमें कुछ कुछ ज्ञान हुआ है, तब तक ज्ञान नहीं है। हनुमान जी जब चले लंका को तो सबको प्रणाम किया, सबन यह कहे नाय सबन का माथा, सबको माथा नवाया, तो सब में तो छोटे छोटे भी रहे होंगे, छोटे छोटे भी वानर रहे होंगे जो उनके प्रणाम नहीं है, लेकिन प्रणाम किया, किसको प्रणाम किया, सबको हनुमान जी ने परमात्मा समझ कर। रावण को भी वो मंदिर मानता, रावण जिसमें रहता है उसको मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा, देखे जाता अग्र जोदा। देखिए ये दृष्टि होनी चाहिए, इसलिए कहा गया कि पश्येत ब्रह्ममयम जगत, दृष्टिम ब्रह्ममयीं कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत, दृष्टि ब्रह्ममय होनी चाहिए। तो श्वेतासुर निषद में ये बात आई है कि ये उपनिषद इतना उदार है, ये पश्येत ब्रह्ममयीं दृष्टिम इसी के लिए कह रहा है, ब्रह्म केवल एक है, अद्वितीय है, अद्वितीय इसलिए कहा कि एक एक कहते थे, एक एक कहते थे ग्यारह हो जाता, एक एक दो हो जाता, लेकिन अद्वितीय अद्वितीय एक ही रहेगा, अद्वितीय ब्रह्म है, अद्वितीय ब्रह्म है, इसलिए आशय भी वही, विषय भी वही, भोक्ता भोक्ता भोग्यम प्रेरितारण मत्वा ये कह दिया, त्रिविध मेतत ब्रह्म, ये तीनों प्रकार का ब्रह्म ही है, प्रेरणा देने वाला और भोग्य भोक्ता भी, जब दूसरी चीज है ही नहीं कोई तब कैसे होगा। तो आप ये कहेंगे प्रेरक कैसे होगा, प्रेरक नहीं हो सकता जो भोग्य होगा, अब भोक्ता हो तो प्रेरक हो ही नहीं सकता, प्रेरणा देने वाला दूसरा होता है, भोक्ता कोई दूसरा होता है और भोग कोई तीसरा होता है। तब बताया वैष्णव ने तो ये उत्तर दिया कि चिद प्रकृति है अचिद, और प्रकृति जीव है, जीव जीव चिद है, तो चिद रूप विशिष्ट प्रकृति और जीव, प्रकृति अचिद है जड़ है और जीव चिद है चेतन है, इससे विशिष्ट भगवान है। तो वो भगवान को कह देते हैं वेदांती लोग ब्रह्म कह देते हैं, एक ही बात है। 15वें अध्याय गीता में पुरुषोत्तम योग बताया गया, का पुरुषस्त्वन्या परमात्मे दुदारता, परमात्मा उसको कहते हैं जो अन्य पुरुषोत्तम है। और पुरुषोत्तम में क्या, संस्कृत में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो प्रथम पुरुष में तो सात अवते आता है, और प्रथम पुरुष में और मध्यम पुरुष में तुम युवाम युवम, और उत्तम पुरुष में अपने अहम 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 आवाम वयम, तो उत्तम पुरुष माने अहम आवाम वयम, मैं ही हूं, क्योंकि मैं कभी नष्ट नहीं होता हूं, कभी किसी ने अपनी मौत देखी हो, कभी किसी ने नहीं देखी, तो कभी किसी ने नहीं देखी, यही तो प्रमाण है, यही प्रमाण है कि जन्म जन्म न होता है न मृत्यु होती है, जन्म मृत्यु किसी की होती नहीं है। सुन सुनाए के ऐसे कह देते हैं तुम्हारी मृत्यु हो गई। अरे सुनने की बात दूसरी है, देखने की बात दूसरी है। जो दिखती नहीं है इंद्रियों के द्वारा या तो वो वस्तु को होती नहीं है। लकड़ी में आग कहाँ दिखती है? लकड़ी में आग नहीं दिखती, दूध में घी नहीं दिखता है, निकाला जाता है परिश्रम से। तो जो चीज नहीं दिखती है वो है नहीं, ये तो प्रमाण नहीं है। लकड़ी में आग है, जब मंथन किया जाता है तो निकलती है आग, उसका लिंग है, चिन्ह है। ना हो तो कैसे निकले? तिल में तेल है अगर तो निकलेगा, और जब है ही नहीं तो कहाँ निकलेगा? तो इसका मतलब यह है कि ब्रह्म सर्वाभाषक है, सर्व स्वयं प्रकाश है, और उसमें ही जगत है, उसमें ही सब जगत अध्यास रूप से है। अध्यास में, अधिष्ठान में अध्यक्ष कोई चीज होती नहीं है। इसका मतलब जगत बिना ही भाषे भास रहा है, बिना ही हुए भास रहा है नहीं लेकिन भास रहा है। तो जो प्रतीति होती है वो प्रतीति व्यर्थ नहीं जाती है। ये बात खूब समझ लेना चाहिए कि प्रतीति होती है, प्रत्यय होता है, मालूम पड़ता है। तो मालूम पड़ना व्यर्थ थोड़ी है। कहते हैं मालूम प्रतीति होती है, रस्सी में सांप दिखता है तो जिसको दिखता है उसको तो भय लगता ही है ना। कहते सांप उसमें है ही नहीं, ये तो ज्ञान होने पर होता है ना। लेकिन जितनी देर दिखता रहेगा उतनी देर तो भय लगेगा ही, उतनी देर भय लगेगा और मारने का प्रयास रहेगा, वो रहेगा सब। क्यों? उस समय उसको मालूम पड़ता है। ऐसे सपने में, सपने में आप लोग बारिद बूढ़ो भय पायो, बारिद में समुद्र में बूढ़ रहे हैं, देखो देखो कोटिन नावन पार करे को नहीं, पार करे को कहे क्यों कोटिन नाव ले आओ आप जागृत में, कोई पार कर सकता है? जागे बिन दूर दुख होई, जागे जब जग जाता है तो अरे हम तो समुद्र में डूब रहे थे, नावें आ रही थी, पता चल जाता है। इसी प्रकार से स्वप्न की तरह संसार है और छाया की तरह माया है। माया कोई चीज है नहीं, ना है, लेकिन अभी मैं बता जो कहा कि प्रतीति हो रही है। तो जिसकी प्रतीति होती है वो ना हो ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण तो जो वस्तु है मालूम पड़ती है वो है, और मालूम पड़ती है और मालूम पड़ती है क्या आनंद रूप है। तो सब वस्तुएं एक सत्ता में हैं, सत है सत में, एक चित्ता में प्रकाश कर रही और प्रकाशित हैं, स्वयं प्रकाश हैं, सब वस्तुएं प्रकाश हैं, एक प्रकाशक है आत्मा। तो कहते हैं कि इसलिए बताया कि जीव और ईश्वर की अलग अलग और अलग अलग किया गया। जिस दिन से जीव ने अपने को अलग मान लिया, पृथक आत्मानम, पृथक मान लिया अपने को, उसी दिन से ही परेशान हो गया। जैसे कमंडल में पानी भरा हो और कमंडल में पानी भरा हुआ है, वो गंगा जी मंगा में गंगा जल ले आओ गुरु जी, और वो कमंडल दिखाए, कमंडल में भरा है, अगर सोचे तो वही वो कहेगा कि कमंडल में जल है, कमंडल में जल गंगा जी का है। इसी प्रकार से जल जैसे गंगा जी का है ऐसे जीव है, अविनाशी है, वही गंगा जी का जल है, गंगा जी का है, गंगा जी में है, कमंडल में है तो क्या, आधार उसका कम है, उसमें नाव नहीं चल सकती, उसमें मछलियां नहीं है, तो नावें नहीं चल रही, इसका मतलब है कि जल तो वही है। ऐसे जैसे जून के महीना में गंगा जी सूख जाती हैं और जल वहां रहता है थोड़ा बहुत। जमुना जी का दृष्टांत देना चाहिए, जमुना जी सूख जाती हैं बिल्कुल, लेकिन जल वहां रहता है, तो जल रहता है उसमें सूकर भगवान अंगड़ाई लेते हैं, बड़ा भगवान और का, जब जल थोड़ा रह जाता है तो या तो भैंसे लूटेंगी या सूकर बड़ा भगवान आएंगे। तो जल थोड़ा है लेकिन है तो समुद्र का, गंदा हो गया है ये बात ठीक है, गंदा हो गया है तो मिट्टी मिल गई। इसी तरह से ये जीव गंदा हो गया है, मिट्टी मिल गई है। नहीं, वो गांव वाले भी कहते हैं जिन्होंने सत्संग नहीं किया उनकी माटी उठ गई है, उनकी माटी आज उठ गई, माने शरीर को माटी बताते हैं, माटी का तो बना ही है, हड्डी मांस वगैरह पृथ्वी का अंश है और रक्त रस जल का अंश है और तेज का अंश अग्नि है जो भीतर पचाती है, पेट के भीतर वायु आकाश वायु है ही है, सांस चलती है वायु है, और आकाश अवकाश को कहते हैं, खाली जगह अवकाश है, खाली जगह जैसे कान है, पेट है, मुंह है, मुंह में पोल है ना, पोल को आकाश बोलते हैं। तो इस तरह से ये 13वां मंत्र आज है, 12 मंत्र हुए, और इसके बाद ब्रह्मानुसंधान है, सगुण साकार का वर्णन भी इसमें है, आगे बहुत अच्छा प्रकरण चलेगा, आप पढ़ लो इसे। बंदेर यथा योनि निज तस् मूर्ति, बंदेर यथा योनि गतस्य मूर्ति, पढ़ो, बंदेर यथा योनि गतस्य मूर्ति न दृश्यते नैव चनलिंगनाशः, न दृश्यते नैव चलिंगनाशः, सैव भूयः सैव भूये एवेन्धन योनि गृह्य तद्वो भयं वै प्रणयेन देहे, हाँ, सैव भूय सैव एंधन धन योनि गृह्या,